श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 3। मम योनिर्महद् ब्रह्मन् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तात्पर्य, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र अर्थात शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के संयोग से होता है। इस चीज को हम लोग 13वें अध्याय में समझ चुके हैं, 13.27 में। जो कुछ भी हम इस जगत में देखते हैं वो क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग मात्र ही है। श्लोक क्रमांक 27। यावत् संजायते किंचित् सत्वम् स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। जो कुछ भी हम चराचर जगत में देखते हैं वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग मात्र है। इसको भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया था। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। बहुत बार प्रश्न करते हैं कुछ लोग कि जीव जब पूरी तरह से निर्गुण है, प्रकृति के परे है, तो किस प्रकार से प्रकृति में फंसता है। तो यहां स्पष्ट है कि भगवान कह रहे हैं संभव सर्वभूतानाम, सभी जीवों का संयोग भौतिक प्रकृति से भगवान के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा संभव होता है। इसका और कोई अन्यत्र कारण नहीं है। महतत्व ही समस्त ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण ही की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिसमें असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सकें। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम न च जायते। परम पुरुष इस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है, भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति या भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, हम लोग थोड़ा समझेंगे ये महद ब्रह्म क्या है और इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में कही गई है। यहां बात हो रही है महत ब्रह्म जो है, श्रील बलदेव विद्याभूषण गीता भूषण में समझाते हैं कि इस प्रकृति का कारण है, इस महान प्रकृति महत जो जगत है इसका कारण है प्रधान, और ये जो प्रधान है वह गुणी भूत ब्रह्म है। ब्रह्म ज्योति या निर्विशेष ब्रह्म में गुणों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन उसी ब्रह्म ज्योति में एक स्थान अगर कह सकते हैं या स्पेस है जिसे प्रधान कहते हैं, जिसमें गुणों का समावेश होता है। प्रकृति के गुण होते हैं लेकिन वो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, और इस प्रधान के गर्भ में जो जीवों का जीव रूपी बीज जो स्थापित किए जाते हैं वो भगवान का है। जो भगवान जो विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडों का जन्मदाता है। अब यहां पे जो ब्रह्म शब्द आया है वो प्रधान को इंगित करता है, क्योंकि उसमें गुणों का समावेश होता है। निर्विशेष ब्रह्म में सृष्टि नहीं होती है, तो उस ब्रह्म में भगवान दधामी अर्थात वो ब्रह्म, वो प्रधान यानी गुणीभूत ब्रह्म, गुणात्मक ब्रह्म प्रधान, उसमें भगवान, उसके गर्भ में भगवान विभिन्न जीवों को जो कि चेतना से युक्त हैं उनको स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे ये जो गर्भ है वह जीव रूपी बीज को इंगित करता है। मतलब बीज जिस प्रकार से एक पुरुष एक स्त्री के गर्भ में बीज स्थापित करता है, ऐसे ही भगवान अपने दृष्टिपात के द्वारा असंख्य जीवों को प्रकृति के गर्भ में स्थापित करते हैं। और अर्थ इसका ये है कि भगवान अपनी शक्ति से जीवात्माओं को जो कि चेतना युक्त हैं उन्हें भौतिक प्रकृति से जोड़ते हैं, जो उन्हें भोग का वातावरण प्रस्तुत करती है। और इस प्रधान से जो कि दोनों प्रकार की प्रकृतियों का संयोग है, विभिन्न प्रकार के जीवों का जन्म होता है, ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत तक। तो ये बात हमने यहां से सीखा। तो आप लोगों के मन में एक इच्छा आ रही होगी कि ये प्रधान क्या होता है। ये शब्द तो हमने भगवद गीता के व्याख्या में नहीं सुना है अब तक। तो प्रधान के बारे में भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवतम के 30 स्कंद में इसको समझाते हैं, 26वें अध्याय में और श्लोक क्रमांक 10। तो वो कह रहे हैं कि जो तीनों गुणों का अव्यक्त शाश्वत संयोग है उसको प्रधान कहते हैं। मतलब ये प्रधान हमेशा रहता है और जो तीनों गुण हैं वो बराबर मात्रा में रहते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, और ये अव्यक्त रूप मतलब प्रस्तुत नहीं होते, सामने प्रकट नहीं होते हैं, तो उस स्थिति को प्रधान कहा जाता है। और जब वह प्रधान व्यक्त रूप में आ जाता है तो वह प्रकृति कहलाता है। भगवान के दृष्टिपात के द्वारा इस प्रकार से वो व्यक्त हो जाता है तो उसको प्रकृति कहते हैं, और जब अव्यक्त रूप में रहता है तो उसे प्रधान कहते हैं। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि जो प्रधान है वह प्रकृति का सूक्ष्म रूप है, जिसमें जितने भी भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश इत्यादि, वो अपने अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं और उन सभी को अपने अंदर वो समावेशित रखता है, उसका नाम है प्रधान। जब प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारे भौतिक अवयव पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मिथ्यांकार मन इत्यादि सब कुछ प्रकट होते हैं तो उसे प्रकृति कहते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रधान जो है वो ब्रह्म है, लेकिन यह ब्रह्म की स्थिति या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से प्रधान अलग होता है, क्योंकि ब्रह्म की स्थिति में, ब्रह्म ज्योति की स्थिति में कोई गुण नहीं होते हैं, गुण मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन प्रधान की स्थिति में भौतिक प्रकृति के गुण होते हैं भले ही वो अव्यक्त रूप में रहें। एक और सुंदर बात यहां पे बताई जा रही है कि प्रधान जो है वो स्थिति है जहां पे कारण और कार्य का अंतर स्पष्ट नहीं होता। अव्यक्त मतलब किससे क्या वस्तु आ रही है, मतलब मुख्यतः कोई प्रकटीकरण नहीं होता, न कारण होता है और न कोई कार्य होता है। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि प्रधान जो है वो समय नहीं है, क्योंकि समय में कार्य और उसकी प्रतिक्रिया होती है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है। साथ ही साथ प्रधान जीव भी नहीं है, जो भगवान की तटस्था शक्ति है, या जीवों की उपाधि भी नहीं है, क्योंकि जीवों की उपाधि शाश्वत नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि भौतिक प्रकृति के प्रकटीकरण से पहले की अवस्था को प्रधान कहते हैं। मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के प्रकटीकरण के अभिव्यक्ति के पहले की स्थिति को प्रधान कहते हैं और उसके गर्भ में भगवान जीवों के बीच को डालते हैं। इसे ही समझ लेना चाहिए कि जीवों की सृष्टि नहीं होती है, जीवों को केवल शरीर दे जाता है उनकी विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप। अब हम लोग देखेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य को आगे। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। धान का ढेर वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। इसको समझ लेना चाहिए कि कोई अगर धान का ढेर है और उसमें से कुछ छोटे बिच्छू निकल के आते हैं, तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो बिच्छू हैं, बिच्छू के बच्चे हैं, उसके पिता या उसका कारण जो है वो धान का ढेर है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि धान के ढेर से बिच्छू उत्पन्न नहीं होते हैं, भले ही बिच्छू आते हुए दिखाई पड़े। उसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, लेकिन जीवों की सृष्टि प्रकृति करने में पूरी तरह से असमर्थ है। केवल प्रकृति जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर देती है, भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के निर्देशन में, भगवान के ही द्वारा सारे जीव प्रकृति के गर्भ में स्थापित किए जाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार और उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको विविध शरीर देने की व्यवस्था प्रकृति करती है। तो इस चीज को समझ लेना चाहिए। इसीलिए भगवान आगे वाले श्लोक में बोलेंगे, अहम बीज प्रदापिता, सारा बीज देने वाले जो पिता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। हरे कृष्णा।